दिन भर 3 फरवरी, मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। वीजा प्रतिबंध मामले पर अमेरिका से मिला पाकिस्तान को आश्वासन। कल गोवा, पंजाब और मणिपुर में मतदान, इधर उत्तर प्रदेश में प्रचार तेज।
हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके खुलवा दीजिए।
नागालैंड में हिंसा के बाद तनाव है बरकरार, और विवेचना में जानेंगे पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह यहिया खां को ज्यादा करीब से।
Dictators do not have their hands on the pulse of the nation. Yahya was living on the borrowed sight of the intelligence agencies. जिन्होंने कहा था कि 33 political parties हैं, election आप free and fair कराओ, तो ये बड़ी बिखरी हुई पार्लियामेंट में आएंगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 7 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी मूल के अमरीकियों और पाकिस्तान में चिंता बनी हुई थी। अब अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि पाकिस्तान को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रख्यात लूर म्यूजियम के बाहर एक सैनिक ने अपने साथियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले एक व्यक्ति पर गोली चलाई है। घायल हमलावर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने इस घटना को गंभीर बताया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमला आतंकवाद जैसा लगता है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि एक सैनिक को इस घटना में मामूली चोट आई है। उसने बताया कि हमलावर पर 5 गोलियां चलाई गईं, जो अरबी भाषा में अल्लाहू अकबर बोल रहा था। फ्रांस के प्रधानमंत्री बर्नार्ड गज़नव ने ये बताया।
Fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du
Louvre संग्रहालय की सुरक्षा संभालने वाले एक अधिकारी पर हमला किया गया, जो चरमपंथी हमले जैसा है। हमें सचेत रहना होगा, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है वो यही है। बेयुक्स में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और मैं फ्रांस के लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस, सुरक्षा बलों और सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री बर्नार्ड गज़नव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी में पुलिस ने फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर रोमानिया के एक 21 साल के नौजवान को चरमपंथी हमले की साजिश रचने के शक में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि ये संदिग्ध इस्लामिक कट्टरपंथियों के संपर्क में था, जो जर्मनी में हमला करने की योजना बना रहे थे। संदिग्ध रोमानिया जाने के लिए विमान में सवार होने जा रहा था। फ्रैंकफर्ट में संदिग्ध के घर पर पुलिस ने छापा मारा है और कई कागजात और डेटा स्टोरेज डिवाइस जब्त कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार में सेना ने रोहिंग्या मुस्लिमों की सामूहिक हत्याएं की हैं और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये अपराध मानवता के खिलाफ अपराध लग रहे हैं। ये रिपोर्ट म्यांमार से बांग्लादेश भागे 200 रोहिंग्या मुस्लिम लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। अब तक म्यांमार के 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम लोग भाग चुके हैं। म्यांमार की सेना ने अक्टूबर में सीमा पर सैनिक पोस्ट पर हुए हमले के बाद रोहिंग्या मुस्लिम लोगों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया था। यूक्रेन की सेना और रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के बीच पूर्वी यूक्रेन के अवदिवका शहर में लड़ाई तेज हो गई है। अवदिवका शहर पर फिलहाल यूक्रेन की सरकार का नियंत्रण है। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दोनेस्क से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में रात भर बमबारी जारी रही। निगरानी रखने वाले OSCE मिशन के उप प्रमुख अलेक्जेंडर हग ने कहा कि इस इलाके में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मौजूदगी चिंता की बात है। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री अर्सेनी यासेन्युक ने रूस के आरोप का खंडन किया है, जिसमें रूस ने लड़ाई के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था।
This is a regular narrative of President Putin and his administration.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके कार्यालय की तरफ से आने वाले बयान झूठ और गलत होते हैं। रूस ने ही लड़ाई शुरू की थी और रूस ने ही यूक्रेन के लोगों पर हमला कर दिया था। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध किया है और यही सच है। ये थे आर्सेनी यात्सेन्युक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में परमाणु विकिरण का रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के दूसरे नंबर के संयंत्र में विकिरण का स्तर पिछली बार के स्तर से एक मौके पर 7 गुना ज्यादा पाया गया, और ये इतना खतरनाक है इसे कुछ ही देर में किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका दिन भर में, नितिन श्रीवास्तव का आदाब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश की सीमाओं को कुछ महीनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया था, जिससे दुनिया के तमाम देशों में खलबली मच गई थी। इसमें वो 7 देश भी शामिल थे जिन पर इसका सीधा असर पड़ा था। जिन पर सीधा असर नहीं पड़ा था लेकिन चिंताएं जबरदस्त थी, उनमें पाकिस्तान शामिल था। बीबीसी ने पाकिस्तानी मूल के अमरीकियों और पाकिस्तान में गहराती चिंताओं के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय से इस पर जवाब मांगा था, जिस पर जवाब आया है कि पाकिस्तान को घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास, जिन्होंने मांगा था यह जवाब। ब्रजेश, क्या कहा है व्हाइट हाउस ने?
देखिए नितिन, इस हफ्ते जब हमने यहाँ के पाकिस्तानी समुदाय से बात की तो काफी खौफो हराश का माहौल था, लोग काफी घबराए हुए हैं। तो कल देर शाम हमने व्हाइट हाउस से जब पूछा तो उनके एक प्रवक्ता ने बताया कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त और नए देशों को प्रतिबंधित देशों की सूची में जोड़ने की कोई योजना नहीं है। प्रवक्ता का कहना था कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में उन देशों को शामिल किया गया था, यानी इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन, जहां के नागरिकों के वीजा के लिए जिस उस तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी जिसकी अमरीकी अधिकारियों को जरूरत होती है, और ये शिकायत ओबामा प्रशासन के समय से ही आ रही थी। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उन्हें उनके नागरिकों के बारे में जो जानकारी चाहिए वो वहां के अधिकारी उनको मुहैया करवा रहे हैं। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो फिर पाकिस्तान को या दूसरे देशों को प्रतिबंधित सूची में रखने की सोची जा सकती है।
जी, तो इधर व्हाइट हाउस ने एक तरफ पाकिस्तान जैसे देशों को यह आश्वासन दिया, उधर दूसरी तरफ ऐसी खबर है कि उत्तर कोरिया के मामले पर अमरीकी रक्षा मंत्री ने खासे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर एक तरह से चेतावनी जारी की है।
जी हाँ बिल्कुल, नए रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस का ये पहला विदेशी दौरा है और वो सबसे पहले अमेरिका के एशियाई सहयोगी देशों से मिलने गए हैं, जो दिखाता है कि अमेरिका अभी भी अपनी पिवट टू एशिया नीति से पीछे नहीं हटा है जिसकी चिंता जताई जा रही थी। और उसी के तहत उन्होंने दक्षिण कोरिया को अमरीकी सहयोग का आश्वासन देते हुए उत्तरी कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते हुए चेतावनी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
North Korea continues to launch missiles, develop its nuclear weapons program, and engage in threatening rhetoric and behavior.
तो जेम्स मैटिस कह रहे थे कि उत्तरी कोरिया परमाणु कार्यक्रम का प्रसार और मिसाइलों का प्रक्षेपण जारी रख रहा है और खतरनाक बयानबाजी और बर्ताव से पीछे नहीं हट रहा। अगर अमरीका या उसके सहयोगियों पर कोई हमला होता है, किसी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है, तो उसका बेहद असरदार और कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इस बयान ने काफी हद तक आश्वस्त किया होगा दक्षिण कोरिया को, जहां पहले से भी लगभग, जैसा कि आप जानते हैं, 28,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं और जिसके बदले साउथ कोरिया 90 करोड़ डॉलर सालाना देता है अमरीका को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि ये बेहद कम है और अगर वो जीते तो अमरीका अपने सहयोगी देशों से अमरीकी मदद के बदले और पैसे वसूल करेगा।
बहुत
ने आश्वासन दिया है कि अमेरिका का सहयोग बरकरार है और ओबामा प्रशासन के समय जो साउथ कोरिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की बात हुई थी उस पर अमल होगा।
कोरियाई क्षेत्र में दरअसल अभी भी अमेरिका की नजर गड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से इस तमाम जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
लौटते भारत, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से मणिपुर, पंजाब, गोवा में कल यानी 4 फरवरी को मतदान होना है। इधर उत्तर प्रदेश में प्रचार दिन पर दिन तेज हो रहा है और इस समय केंद्र इसका पश्चिमी हिस्से में है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने आज एक रोड शो किया है और सुनते हैं अखिलेश ने मोदी सरकार को किस तरह से घेरने की कोशिश की। आज
सब जमा करा लिया, अब तो शायद पूरे देश का पैसा आपके पास है, कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का। हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके भरवा दीजिए।
उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी खासे एक्टिव सजग रहे इसी इलाके में और उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी को निशाना बनाया।
सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, अभी अभी पूरे उत्तर प्रदेश ने इस गठबंधन को दूरदर्शन पर देखा था। मैं आज कहना चाहता हूं ये दोनों सहजादे ये दोनों शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं चाहते, यूपी की जनता की आंख में धूल चौंकना चाहते हैं।
अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अमित शाह, तो फिर मायावती के बारे में बात कैसे ना हो। मायावती भी लगातार रैलियां कर रही हैं और मतदाताओं से उन्होंने आज एक खास अपील भी की।
अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई चुनावी सुगाहट पर मैंने अब से कुछ देर पहले बात की इन्हें कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार राधे कृष्ण से।
पश्चिम से जो हवा बहती है पूरब की तरफ, वही धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहले फेज और दूसरे फेज में पश्चिमी क्षेत्रों में चुनाव होते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ से जो हवा बहेगी वो पूर्वांचल की तरफ तेज पकड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए पश्चिम की पश्चिमी क्षेत्रों में आज सारी पार्टियों ने फोकस किया हुआ है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बाह विधानसभा क्षेत्र में और फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए संबोधित किया है। मायावती जो बीएसपी की सुप्रीमो हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी आज मुजफ्फरनगर और एटा की तरफ विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में अपनी सभाओं को संबोधित किया है।
राधे कृष्ण जी, ये बताएं कि सभी पार्टियां अब जब चूंकि प्रचार एकदम तेज है और ज्यादातर पार्टियों को ये लग रहा है कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा एक नहीं उभर कर आ रहा है जिस पर करो या मरो या उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, तो रणनीति क्या लग रही है पार्टियों की?
नितिन जी, कुल मिलाकर के आज भी मैं आगरा में हूँ, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी तमाम लोगों से मेरी दिन में बात भी हुई है, लेकिन अभी कोई खुल करके सामने नहीं आ रहा है कि कोई अगर आपसे बहुत दिल की बात कहे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और यही कहीं न कहीं असमंजस सारी पार्टियों में है कि क्या होगा इस विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि पहले फेज और दूसरे फेज में काफी कुछ है, करीब 100 के आसपास सीटें हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो जो लोकदल है, भारतीय जनता पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इसके लिए तो काफी कुछ है यहाँ पर दांव पे लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ जो मिलेगा वो सही एक तरीके से आगे चल करके उनकी बढ़त वो काम आएगी।
ये थे उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राधे कृष्ण।
बीबीसी इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने जोरों पर है। कहीं नोटबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश है तो कहीं राम मंदिर और समाजवादी पार्टी में पड़ी। क्या जनता के वास्तविक मुद्दे इस चुनाव प्रचार में कहीं जगह ले पाए हैं? यही है शनिवार 4 फरवरी को होने वाले इंडिया बोल का विषय। अगर आप इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो फोन करिए इन नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में गुरुवार को हुए हिंसक विरोध के बाद आज स्थिति भले ही थोड़ी शांत है लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
गुरुवार को राजधानी कोहिमा समेत कई जगह हुए हिंसक विरोध के कारण हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी संगठन लगातार मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि निकाय चुनावों में किसी तरह का महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने उनके साथ धोखा किया और इस वजह से 2 निर्दोष युवकों की जान चली गई। इस विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को हालात उस समय काफी बिगड़ गए जब हजारों की तादाद में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोहिमा में कई सरकारी भवनों में आग लगा दी। बाद में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को भी घेर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी अब भी कोहिमा में ही है, हालांकि स्थिति को काबू करने के लिए सेना को उतारा गया है। महिला आरक्षण के खिलाफ हुए इस हिंसक विरोध पर नजर रख रहे राजनीतिक विश्लेषक अतो यप्थोमी कहते हैं,
जो घटना हुआ है इसको एवोकेट था एक्चुअली, ये गवर्नमेंट ने जो केवल ट्राइबल्स का एल्डर्स को साथ में पब्लिक का ये जो एजिटेशन जो हुआ था, इन्होंने जो मीटिंग किया था, तो बाद में फिर ये गवर्नमेंट ने विधानसभा में जो डिक्लेयर किया था एक्चुअली, अभी बंद चल रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा से फिर चांस देंगे कि एटलीस्ट अच्छे फिनिशर है।
ये थे दिलीप शर्मा गुवाहाटी से। और अब समय इस हफ्ते की विवेचना का। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार का ठीकरा उस समय पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खां पर फोड़ा गया था। जनरल याहिया पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने जनरल अयूब खां के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। जनरल याहिया खां की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं रेहान फजल।
इतनी बड़ी जंग में किसी एक महाज पर وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے. اس جنگ میں جو ہماری قومی بقا کی جنگ ہے آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ.
یہ بھاشن تھا جنرل یحییٰ خان کا جو انہوں نے 16 دسمبر 1971 کو پوروی پاکستان میں پاکستانی سینا کے آتم سمرپن کرنے کے بعد پاکستانی جنتا کو سمبودھت کرتے ہوئے دیا تھا. 1969 میں جب پاکستان کے تتکالین راشٹرپتی جنرل ایوب خان کا پاکستان میں ویروھ بڑھ گیا تو انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ستا سونپ کر راجنیتی سے سنیاس لے لیا تھا. ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی یحییٰ خان نے کچھ ہی دنوں کے بھیتر چناؤ کرانے کا اعلان کیا. ان چناؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے صاف ستھرے چناؤ تھے. 70 کے دشک میں پاکستان میں بھارت کے راجدوت رہے شنکر باجپئی بتاتے ہیں.
ان کے جو نیچے الیکشنز ہوئے تھے وہ پہلے بار فری اینڈ فیئر تھے. اس کا نتیجہ جا کے مشکل ان کو پھنسایا کیونکہ پہلے بار فری اینڈ فیئر الیکشنز کی وجہ سے مجیب صاحب کی پارٹی بالکل سویپ کر گئی. اس کے علاوہ اگر جو پرانے طریقے سے ہوتے تو کافی گڑبڑ ہوتی تھی الیکشنز میں. وہاں دوسری بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی پارٹیاں جیتیں جو پاکستان کو پھر آخر میں تباہی کر دیا. مگر انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ جو بھی ہو یہ بالکل الیکشنز پہ کوئی شک نہ ہونا چاہیے.
اس فیصلے کا کارن یحییٰ خان کی بھلمن ساحت تھی یا انبھوہینتا؟ کچھ سال پہلے یحییٰ خان کے ای ڈی سی رہے اسکواڈن لیڈر ارشد سمیع خان نے مجھے بتایا تھا.
ڈکٹیٹرز ڈو ناٹ ہیو دیئر ہینڈ آن دی پلس آف دی نیشن فرینکلی. یحییٰ واز لیونگ آن دی بوروڈ سائٹ آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے کہا تھا کہ جی 33 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن آپ فری اینڈ فیئر کراؤ تو یہ بڑی بکھری ہوئی پارلیمنٹ میں آئیں گی, آپ جس کو سپورٹ کرو گے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کی بات مانے گی, آپ پریزیڈنٹ رہو گے وغیرہ وغیرہ.
یحییٰ خان کی یہ بڑی ناسمجھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی جنتا کے اس فیصلے کو سویکار نہیں کیا. شیخ مجیب گرفتار کر لیے گئے اور حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ بھارت اور پاکستان یدھ کے کگار پر آ گئے. 70 کے دشک میں پاکستان کے ودیش سچیو رہے سلطان محمد خان اپنی آتم کتھا میموئرز اینڈ ریفلیکشن آف اے پاکستانی ڈپلومیٹ میں لکھتے ہیں.
یحییٰ خان یہ وشواس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کا انہوں نے کوئی کارن بھی نہیں بتایا کہ بھارت پوروی پاکستان میں سینیہ ہستکشیپ کرے گا. اس سمے پاکستانی سینا کے جنرلوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیر لڑاکو بنگالیوں کو محج ایک چھرے کے زور پر جھکا دیں گے. اتہاس نے بعد میں سدھ کیا کہ وہ کتنے غلط تھے. اس لڑائی کے بعد پاکستان کا آکار آدھا ہو گیا. انہیں بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور اس مانسک آگھات سے ابھرنے میں انہیں کافی وقت لگا. ایک راشٹرپتی کے روپ میں ایک بکھری ہوئی آبادی کا نیتتو کرنے کی قابلیت ان میں نہیں تھی. انیتک راجنیتوں سے نبٹنے اور وشو راجنیتی کی جٹلتاؤں کو بھی سمجھنے کی ان کی کھمتا سیمت تھی.
13 دسمبر تک یہ بالکل اسپشٹ ہو گیا کہ پاکستان پوروی مورچے پر بری طرح سے پچھڑ رہا ہے. جب چین سے مدد کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو یحییٰ نے مجبوراً امریکی راشٹرپتی رچرڈ نکسن کو فون ملایا. ارشد سمیع اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں لکھتے ہیں.
ہر جگہ سے پریشان ہو کر یحییٰ خان نے راشٹرپتی نکسن کو سندیش بھیجا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. 13 دسمبر 1971 کی رات 2 بجے راشٹرپتی بھون کے ٹیلی فون آپریٹر نے مجھے فون کیا کہ راشٹرپتی نکسن ہمارے راشٹرپتی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے انٹرکام سے یحییٰ کو جگایا. نیند میں چور یحییٰ نے فون اٹھایا. کیونکہ لائن بہت خراب تھی یحییٰ نے مجھ سے کہا کہ میں دوسری لائن پر ساری باتیں سنوں اور اگر لائن ٹوٹ جائے تو نکسن سے بات کرنا جاری رکھوں. نکسن کی باتوں کا لب و لعاب یہ تھا کہ وہ پاکستان کی سرکشا کے لیے بہت چنتت ہیں اور انہوں نے پاکستان کی مدد کے لیے 7th بیڑا بنگال کی کھاڑی میں بھیج دیا ہے. جیسے ہی نکسن نے فون رکھا یحییٰ نے مجھ سے کہا کہ میں جنرل حمید کو فون لگاؤں. جیسے ہی حمید لائن پر آئے یحییٰ لگ بھگ چلاتے ہوئے بولے, ہم وی ہیو ڈن اٹ, امریکنز آر آن دی وے.
امریکی بیڑا اگلے دن تو دور, ڈھاکہ کے گرنے تک بنگال کی کھاڑی میں نہیں پہنچا. دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد فیلڈ مارشل سیم مانیک شاہ اور جنرل یحییٰ خان دونوں دلی میں سینا مکھیالے میں تعینات تھے. جنرل ایس کے سنہا اپنی آتم کتھا ए सोल्जर रिकॉल्स में लिखते हैं।
1947 में मानेकशॉ और यहिया खां दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। यहिया खां को मानेकशॉ की मोटरबाइक बहुत पसंद थी, वो इसे खरीदना चाहते थे लेकिन सैम उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। यहिया ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटरबाइक को यहिया खां को बेचने के लिए तैयार हो गए। दाम लगाया 1,000 रुपये। यहिया मोटरबाइक पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। 1971 की लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने यहिया खां के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया।
यहिया खां को लेडीज मैन कहा जाता था, कई महिलाओं से उनकी दोस्ती थी। मलकाए तरन्नुम नूरजहां को वो नूरी कहकर पुकारते थे और वो जनरल यहिया खां को सरकार कहकर बुलाती थी। अरशद समी यहिया और नूरजहां से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं।
एक शाम थी कि जनरल यहिया के दोस्त बैठे थे उनके साथ, मैं अपने कमरे में जा चुका था तो मुझे उन्होंने समन किया, मैं गया। मुझे कहते हैं कि बेटा, ही यूज्ड टू रिपीट हिमसेल्फ, बेटा बेटा बेटा, ये नूरजहां का एक नया गाना आया है, मैंने सुना है नूरजहां का एक नया गाना है, मेरी चीचिता मेरी चीचिता, डू नो अबाउट इट? मैं कहती हूं नहीं। अच्छा, तो ये सारे कहते हैं कि अभी वो गाना इतना कम रिलीज हुआ कि शायद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा एडीसी जो है वो लेके आएगा। तो खैर, अब मैं पठान हूँ और मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी है, तो मैं उसको याद करता आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये लफ्ज पहले कभी सुना नहीं था, मेरी चीचीदा। तो अब मैं रट्टा लगाता हुआ आ रहा हूँ उनके कमरे से अपने कमरे को, और रस्ते में मैं भूल गया क्योंकि क्या था चीची के आई हैड टू कॉल हिम लॉन्ग डिस्टेंस माय वाइफ एंड सेड, यार वो नूरजहां का कोई गाना है, कोई जैसे कोई चीज है, हाँ हाँ मेरी चीची था। अब वही बात, रात की 11 बज रहे, मैंने प्रेसिडेंसी की गाड़ी एक मंगवाई, उसमें बैठा तो बोरी बाजार है कराची में एक, मैंने कहा चलो वहां चलता हूँ सीधा। दूसरी बात है, दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियों में घूमते हुए मैं वहां पहुंच गया, नॉक किया, बाहर आए, मैंने कहा यार मैं आपका एक कस्टमर हूँ पुराना, तो फरमाइए। मैंने कहा जी मुझे वो एक रिकॉर्ड चाहिए, नूरजहां का नई रिलीज है मेरी चीची दा। कि जी जरूर आइए, कल सुबह आ जाइए, आपको दे देंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरी बैट लगी हुई है किसी के साथ कि मैं आज और अभी लेके आऊँ। तो कहते मुझे कहते कि सर इस वक्त? मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वक्त। मैंने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा? तो समझे कि शायद ये कोई बिगड़ा हुआ नवाब है। हम उनकी दुकान पे पहुंच के उन्होंने दुकान खोली, रिकॉर्ड निकाला, मुझे दिया। उस जमाने में वो रिकॉर्ड 5 रुपए का हुआ करता था, मैंने उनको 50 रुपए दिए। फिर मैं प्रेसिडेंसी में आके जब गया, प्रेसिडेंट साहब को वो रिकॉर्ड दिया, बड़े ही वाज वेरी एलेटेड, वेंट इनटू अ हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन।
मेरी चीचीदा, ओ मेरी चीचीदा, छल्ला महिला ने कर जाके शिकायत लाऊंगी, होय मैनू बदोबदी पीछे पीछे ला लिया।
यहिया को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। एक बार वो राष्ट्रपति के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान गए, वहां एक रात उन्होंने अपने एडीसी से कहा कि रात में वो बिना अपने सुरक्षा अमले को बताए एक पार्टी में जाएंगे।
यहिया मुझसे बोले, तुम्हें एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, किसकी तरफ से? यहिया बोले, खंडोकर साहब। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कौन सी कार इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, मर्सिडीज सर। उन्होंने कहा, आज तुम दूसरी कार मंगवाओ, ड्राइवर से कहो कि वो उसे तुम्हारे कमरे के बगल में पार्क करे, उससे कार की चाबी ले लो और उससे कहो कि अब तुम्हारी छुट्टी है। यहिया बोले, ठीक 9:05 पर तुम पिछले वाले वरांडे और अपनी कार की अंदर की लाइट ऑफ करोगे, 9:10 पर तुम कार का पिछला दरवाजा खोलोगे, 9:15 पर मैं कार की पिछली सीट पर आकर बैठूंगा, तुम मुझे बगल में रखी हुई चादर से कवर करोगे और ये ख्याल रखोगे कि मेरे करीने से सजाए हुए बाल न बिगड़ जाएं, दरवाजा बंद करोगे और प्रेसिडेंसी के गेट से बाहर निकलोगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को इस बात का आभास न हो कि तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपनी कार में ले जा रहे हो। सब कुछ योजना अनुसार हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद यहिया ने मुझसे कार रोकने के लिए कहा। वो आगे आकर मेरी बगल में बैठते हुए बोले, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे ड्राइवर हो। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने कहा, पहले फूल वाले के यहाँ चलो और मिसेज खंडोकर के लिए फूल खरीदो। अपने दोस्त के घर पहुंचकर यहिया ने अपने हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाजा खुला और खंडोकर साहब राष्ट्रपति को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह चुपके से उनके घर पहुंच जाएंगे बिना किसी सायरन और लाओ लश्कर के। याहिया बोले, कानू तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अपने भारी शरीर के बावजूद याहिया खां बहुत अच्छे डांसर थे। उस रात उन्होंने पार्टी में मौजूद हर महिला के साथ डांस किया। चूंकि वो वीकेंड था, पार्टी देर रात तक चली। बीच बीच में याहिया मुझसे पूछते रहे, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? जिस तरह मैं उन्हें लाया था उसी तरह उन्हें वापस ले गया। याहिया कार की पिछली सीट से बाहर उतरे, मुझे धन्यवाद दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए।
याहिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें लोगों को तोहफे देने का बहुत शौक था, लेकिन इसके लिए वो सरकारी पैसे के बजाय अपना खुद का पैसा खर्च करते थे। उनके ADC अरशद समी खां अपनी किताब में लिखते हैं,
जैसे ही याहिया राष्ट्रपति बने उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि मैं हमेशा अपने साथ कुछ उपहार तैयार रखूं, जिन्हें वो स्थानीय और विदेशी मेहमानों को दे सकें। ये कोई नई बात नहीं थी। अयूब खां के जमाने में भी हम इस तरह के उपहारों से भरा पूरा एक ट्रंक अपने पास रखते थे। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना होता था कि याहिया हर उपहार के लिए पैसा अपनी जेब से देते थे। एक बार बेगम याहिया की एक दोस्त ढाका से मिलने उनके पास आई। वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन के दालान में बैठकर चाय पी रही थी। तभी याहिया गोल्फ खेलकर वापस लौटे। बेगम याहिया ने उनसे फारसी में कहा, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। याहिया बोले, मैं आज आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ? उस महिला ने बहुत सकुचाते हुए कहा, अगर आप तोहफा देने पर इतना जोर दे रहे हैं तो अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज मुझे दे दीजिए। याहिया बोले, इस वक्त तो मेरे पास ये गोल्फ टी शर्ट, पैंट और जूते हैं। ये किसी महिला को नहीं दी जा सकती। एक टॉवल रुमाल भी है मेरे पास, जो मेरे पसीने से भरा हुआ है। मेरे पास एक चीज है आपके लिए, आप अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। उस महिला ने अपनी आंखें बंद की और झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। याहिया ने अपने हाथ से सोने की ऑयस्टर रोलेक्स घड़ी उतारी और उस महिला की कलाई में पहना दी। आंखें खोलते ही उस महिला ने विरोध करते हुए कहा, मैं तो आपसे एक रुमाल की उम्मीद कर रही थी, ये तो बहुत महंगी चीज है, आप इसे वापस ले लीजिए। याहिया हंसते हुए बोले, एक बार दिए जाने के बाद तोहफा वापस नहीं लिया जाता।
1971 की लड़ाई में एक बार जब याहिया खां के हाथ से चीजें फिसलना शुरू हुईं, तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद तो पहल उनके हाथ से जाती रही और फिर उन्होंने हो रही घटनाओं पर रिएक्ट भर किया। भुट्टो को अपना पद सौंपने के बाद याहिया ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा था, गुड बाय सर, आई विश यू लक। जब वो अपने एक और साथी जनरल पीरजादा की तरफ मुड़े तो उनके मुंह से निकला, अब आप एक आजाद शख्स हैं। याहिया ने जोर का ठहाका लगाते हुए अपने बेटे अली से कहा, हाँ अली, तुम और हम अब आजाद हैं। याहिया बहुत ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहे और अपने जीवन के अगले 5 साल उन्होंने नजरबंदी में बिताए। इस दौरान उन्हें लकवा भी मार गया। जनरल जिया ने जब भुट्टो को सत्ता से हटाया, तब जाकर याहिया खां की रिहाई हो सकी। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
याहिया खां पर यह थी रेहान फजल की विवेचना। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले सुनते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। वाशिंगटन का आश्वासन, मुस्लिम बहुल देशों से प्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक से पाकिस्तान को घबराने की जरूरत नहीं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रख्यात लूर म्यूजियम के बाहर एक सैनिक ने अपने साथियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले एक व्यक्ति पर गोली चलाई। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमला आतंकवादी हमले जैसा। यूक्रेन की सेना और रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के बीच पूर्वी यूक्रेन के अवदिवका शहर में लड़ाई तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार में सेना ने रोहिंग्या मुस्लिमों की सामूहिक हत्याएं की हैं और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए हैं। जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में परमाणु विकिरण का रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ जाने का खतरा जताया गया है। BBC समाचार।
दिन भर में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तब तक BBCHindi.com पर पल पल की खबरों के लिए बने रहिए।